मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा यानी कि डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज 8 जुलाई 2014 है और आज के इस afeias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चार मित्रों का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। ये चार मित्र वे हैं जिन्होंने इस afeias.com को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। इसमें हैं अमित नंदन पांडे कानपुर से, करण सिंह कोटपुतली जयपुर से, आशीष कुमार बाराबंकी से और चंद्रदीप गांधी हजारीबाग झारखंड से। मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि ये क्या क्या करना चाह रहे हैं, ताकि एक दिमाग में आइडियाज आते हैं। जब दूसरों की हम बातें सुनते हैं तब हमारे दिमाग में भी आइडियाज जनरेट होते हैं। इसमें करण सिंह जी जो कोटपुतली जयपुर से हैं, वो स्कूल में टीचर हैं जहां 2000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताएंगे। करण सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अगर 2000 स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाए और उसमें से 200 स्टूडेंट की भी ये आदत बन गई कि वो रोज ऑडियो गाइडेंस सुनेंगे, तो आप 3 साल के बाद इनसे मिलिएगा जब ये आपके यहां से पढ़ करके और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे। मित्रों, मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है। उस समय मैं सर्विस में था। भोपाल के ही पास में, बिल्कुल पास में एक डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, वहां से एक लड़की सेलेक्ट हुई थी। उसकी 34th या 36th रैंक थी। उसका नाम था प्रीति। आप यकीन करेंगे कि वो लड़की एक मजदूर की बेटी थी, मजदूर की बेटी। और मैंने उसका भोपाल में फिर लेक्चर कराया था अपने ऑफिस के ही ऑडिटोरियम में, ताकि लोग उसको सुने। उसमें उसने अपने पूरी जो सफलता का जो रहस्य बताया कि वो सफल कैसे हो गई आईएएस में, उसने बताया कि बचपन से ही जब वो 6वीं 7वीं में थी तो स्कूल के टीचर ने एक प्रोविजन किया कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जो रोजाना सभी लड़कों के सामने, वो जब प्रार्थना होती है उस समय न्यूज के बारे में बताएगा कि आज की मुख्य खबरें क्या है। प्रीति ने वो बीड़ा उठाया और शुरू से लेकर के आखिरी तक, वो कॉलेज के समय तक ये करती रही। और उसने कहा था कि मेरी उसी आदत ने मुझे आज आईएएस बना दिया। करण सिंह जी, मुझे वो घटना बिल्कुल याद आ गई। यदि इन विद्यार्थियों को अभी से आप इस काम में लगा देंगे, और मैं केवल जनरल नॉलेज की बात नहीं बता रहा हूं, देखिए कि जो ऑडियो गाइडेंस है आप लोग सुनी रहे हैं, इसमें कुछ मोटिवेशन होता है, कुछ एनालिटिकल पावर बढ़ाने का तरीका होता है, चीजों को कैसे समझें ये भी बात बताई जाती है, उत्तर कैसे लिखें, तो हम ढेर सारे इश्यूज पर बात करते हैं। और ये सारे इश्यूज किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखते हैं। नो डाउट कि सिविल सर्विस के लिए एक्सक्लूसिवली मायने रखते हैं। आपने ये बीड़ा उठाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके बाद आशीष कुमार हैं बाराबंकी से। उन्होंने कहा है कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन इसके बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। तो बिल्कुल, बहुत से लिंक होते हैं, उस पर आप डाल सकते हैं। और क्या तरीके होते हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद्रदीप गांधी जो हजारीबाग झारखंड से हैं, उन्होंने कहा है कि वो कॉलेज में इसके बारे में सेमिनार करेंगे। वहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां वो खुद भी अभी पढ़ रहे हैं, वहां भी एक सेमिनार करेंगे, वहां सेमिनार करके स्टूडेंट्स को जानकारी देंगे। अमित नंदन पांडे जी ने तो बहुत ही इमोशनल तरीके से कहा है कि कानपुर में प्रचार का जिम्मा आप किसी दूसरे को न दें, ये बीड़ा मैं उठाता हूं। अमित नंदन जी, आपकी इस भावना का मैं सम्मान करता हूं। जरूर कानपुर में आईआईटी है, वहां से ज्यादातर स्टूडेंट आईएएस की तैयारी करते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी तरीके से आप अपनी अप्रोच वहां बना सके, वहां के स्टूडेंट्स को आप बता सके, जैसे वहां के प्रिंसिपल से बात करके एक बोर्ड पर लगा सकते हैं, एक न्यूज आइटम के रूप में एक सूचना दे सकते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये है कि ये फ्री है। बताते चले कि अगर वो कमर्शियल होते हैं तो कॉलेज वाले भी मना करते हैं, इंस्टीट्यूट वाले भी मना करते हैं, लेकिन जो चीज फ्री प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए जनरली वो मना नहीं करते हैं। तो यदि आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपको अनुमति मिल जाए कि आप नोटिस बोर्ड में वहां लगा दें। अगर वहां किसी वजह से अनुमति नहीं मिलती है तो वहां के आसपास अगर कहीं आप पोस्टर्स चिपका सकेंगे लिख करके, तैयार करके, तो स्टूडेंट्स उसको देखेंगे और फिर तो विद इन द कॉलेज, विद इन द इंस्टीट्यूट वो चीजें लगातार फैलने लगती हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट इसकी सामाजिक भूमिका को समझते हुए आगे आ रहे हैं। मित्रों, जब अभी मैंने सामाजिक भूमिका की बात आपसे की है, अचानक मेरे दिमाग में एक बहुत ही इमोशनल घटना याद आ गई। मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं जब आईएएस की तैयारी कर रहा था और 1980 में जब कोचिंग के लिए दिल्ली गया, हालांकि एक सप्ताह के बाद मैं वो कोचिंग छोड़कर आ गया था, तब कोचिंग वालों ने ही मेरे लिए जिस कमरे में व्यवस्था कराई थी, जिस बिल्डिंग में, तो मैं और मेरे फ्रेंड जो अंबिकापुर से ही गए थे, हम लोग एक कमरे में रहते थे। हमारे सामने के कमरे में एक स्टूडेंट रहता था जो अकेले रहता था। बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत प्यारा, टॉल, 6 फीट हाइट, कोरा चिट्टा, बहुत शरीफ, बहुत संस्कारवान। उसकी सबसे यूपी के थे वो। उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि वो 6 भाई थे और उसके 5 भाई आईएएस में थे, और इसका भी सिलेक्शन स्टेट सिविल सर्विस में हो चुका था। यूपी स्टेट सिविल सर्विस में इसका सिलेक्शन हो चुका था। ये आईएएस के लिए ट्राई कर रहा था और ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था। हम लोगों के समय में 3 अटेम्प्ट हुआ करते थे, ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था। जी जान से लगा हुआ था, नो डाउट, बातचीत करने से लगता था कि वो इंटेलिजेंट है। हम लोग तो शुरू शुरू में तैयारी ही कर रहे थे, वो तो पहले इससे पहले 2 अटेम्प्ट दे चुका था, और हम लोगों को लगता था कि ये बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा। और हम लोग डरते भी थे कि अगर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हम जैसों का क्या होगा। दोस्तों, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना सुनने को मिली कि रिजल्ट आया, मेंस क्वालिफाई कर चुका था, इंटरव्यू का रिजल्ट आया, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली ही कमिटेड सुसाइड, उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मैं आज जब सोचता हूं तो लगता है कि क्या सच में उसका जीवन इतना अर्थहीन था, या उसको ऐसा कदम उठाना चाहिए था? नॉट एट ऑल। उसके दिमाग में शायद यही एक कुंठा होगी कि मेरे सारे भाई ऑलरेडी आईएएस में हैं और मैं स्टेट सिविल सर्विस में हूं, तो वो इन्फीरियरिटी वो महसूस कर रहा होगा। उसके चांसेस खत्म हो गए थे, उसको भविष्य शायद नजर नहीं आ रहा होगा। सबके मूल्यांकन का अपना अपना तरीका है। मुझे लगता है कि हमारे देश ने एक बहुत अच्छा प्रशासक और एक बहुत अच्छा टैलेंट खो दिया है। इसी के संदर्भ में मुझे ध्यान आता है दोस्तों कि बहुत से लोग जो दूर दराज के गांव में हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिनके पास गाइडेंस की सुविधाएं नहीं है, उनके पास टैलेंट है। आप देख रहे हैं कि जब टैलेंट हंट के अंतर्गत जब गाने के लिए प्रतियोगिताएं होती हैं, नृत्य के लिए प्रतियोगिताएं होती हैं, तो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों से कैसे कैसा टैलेंट उभर करके सामने आ रहा है, आप देखते हैं चैनल्स पर। इस तरह के टैलेंट हमारे आईएएस के लिए भी चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन उन तक सही ढंग से हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो सही तरीके से हम लोगों के पास पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक साधन है, ये जो afis.com है, मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि वो उनको बना ही देगा, किसी को भी बना ही देगा, नॉट एट ऑल। मैं तो केवल ये मानता हूं फ्रेंड्स कि कुछ नहीं है। आप एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मैं मान करके चलता हूं, एज फॉर एज द ब्यूरोक्रेसी इज कंसर्न। इसमें ये मेरी छोटी सी आहुति है बस, और कुछ नहीं है, बाकी तो सब आपको ही करना है। मैं तो एक थोड़ा सा रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उस यज्ञ में मेरे जितने भी प्रिय श्रोता हैं वो सब भी अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति जो डाल सकते हो डालें। ये दोस्तों मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब आपने मुझे सुना है, जो पहले से सुन रहे हैं, मैं हमेशा एक स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करता हूं, और मैं चूंकि इसका अनुभव मुझे है और बहुत जबरदस्त रूप से मुझे इसका अनुभव है, इसलिए भी मैं इतने दमखम के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करता हूं। और मुझे लगता है कि जब हम कृतज्ञता का जीवन जीते हैं, लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड जीते हैं, तो हमारी वो स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। और जब हम कृतज्ञता का जीवन जीते हैं, या कह लीजिए कि जब शिकायतों का जीवन जीते हैं, तो हम स्पिरिचुअल एनर्जी तक नहीं पहुंच पाते। और मुझे लगता है कृतज्ञता का जीवन जीने का एक तरीका यह है कि यदि हमको किसी वजह से किसी के द्वारा कोई लाभ हुआ है, तो हम कोशिश करें कि दूसरों को भी कुछ न कुछ लाभ पहुंचा सके। ये पे करना है, कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो मित्रों, आज के ओपनिंग रिमार्क्स में इतना ही। मैं फिर से अपने इन चारों मित्रों का स्वागत करता हूं। बीएस मीना जी ने अपना एड्रेस भेजा है। बीएस मीना जी, आपके पास सामग्री, कोशिश होगी कि वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल के रेडियो समाचार में पर। आपने देखा और सुना होगा कि कल के रेडियो समाचार में कुछ भी विशेष नहीं है, और सच पूछे तो जब से संसद शुरू होती है ना, तब से वो संसद में क्या हुआ, क्या बहस हुई, फलाने फलाने की ज्यादा चर्चा होती है, काम की चीजों पर कम चर्चा होती है, न्यूज बहुत कम बन पाती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी बात नहीं थी। 2-3 चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैं महंगाई के ऊपर। आपने देखा है कि महंगाई पर संसद में चर्चा हुई, वित्त मंत्री जी ने अपना जवाब दिया, बीएसपी ने अपना आरोप लगाया, विपक्ष अपनी बात कह रहे हैं, सदन का वॉकआउट हुआ, बहिष्कार हुआ, ये सारी चीजें, स्थगन हुआ, ये सारी चीजें चलती रही। और जो वित्त मंत्री जी ने जो कहा, या कह लीजिए जो पार्टी अभी सत्ता में है, वो लगातार महंगाई के बारे में ये कह रही है कि ये पिछली सरकार की देन है, पिछली सरकार की जो नीतियां रही हैं उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और इसको अचानक एक दिन में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब विपक्ष इसके बारे में जो भी बात कहे, है ना, आप उसको अलग कर दीजिए, जैसे कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी पार्टी हो, आप जो डिसीजन लेंगे, जो फाइनल जो आपको डिसीजन लेना है, अपना कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है, वो आपके पार्टी लाइन से एबव होनी चाहिए, वो ऊपर होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, है ना। पार्टियों के वक्तव्यों के पीछे उनके अपने राजनीतिक हित होते हैं, उनके अपने राजनीतिक दल की लाइन होती है, राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है। जैसे देखें कि जयराम रमेश जी बहुत अच्छे थिंकर हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं। अभी उन्होंने एक दो दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि सरकार कहीं ऐसा न हो कि गंगा अभियान को हिंदू एजेंडा बना दे। अब ये बात अगर आप सुने तो ये पार्टी के आधार पर है, ये जो उन्होंने ये बात कही है, ये बौद्धिक व्यक्ति के रूप में बात नहीं कही है, ये एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में बात कही है। क्योंकि बीजेपी को लेकर के लगातार विपक्षी दल यही प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदूवादियों की पार्टी है और देश में निरपेक्षता खत्म हो जाएगी और एक जाति विशेष और धन विशेष के लोगों का दबदबा हो जाएगा, जो माइनॉरिटी में है उनके ऊपर संकट आएंगे। आपने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी ये सारी चीजें कही जा रही थी। तो एक जो व्यक्ति है, एक मेल पूछा भी गया है, आज किसी का मेल आया भी है कि एक व्यक्ति जब कहता है या आर्टिकल लिखता है, याद रखिए, तो बट नेचुरल है कि वो अपनी पार्टी लाइन के अनुसार लिखता है, पार्टी लाइन के अनुसार वक्तव्य देता है। उसमें से आप तथ्य निकालिए, कंटेंट निकालिए, फैक्ट्स निकालिए। जैसे गंगा अभियान के बारे में ही जयराम रमेश जी का एक आर्टिकल मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने चार पांच दिन पहले नॉलेज सेंटर में डाला था और मैंने कहा था यह बहुत अच्छा वेल रिटन आर्टिकल है, क्योंकि उसमें कंटेंट है, तथ्य तो है, तथ्यों को तो झुठलाया नहीं जा सकता ना, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ, उसके एनालिसिस आप कैसे करते हैं वो एक अलग बात है। तो आप कभी भी किसी भी तरह की ऐसी बातें सुनने पर हमेशा पार्टी लाइन और रियलिटी, इसको अलग अलग करके आप देखने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लेते हैं महंगाई की बात। अब आप देखिए कि बट नेचुरल, ये बहुत स्वाभाविक है कि आप महंगाई को एक दिन में कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपने पढ़ी हो, कि कार्ल मार्क्स जो एक सामाजिक संरचना की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जिसको बहुत वैज्ञानिक सोच भी माना जाता है, कि किसी भी समाज की जो मूलभूत, जो केंद्रीय जो संरचना है, वहां अर्थव्यवस्था होती है, उसको उन्होंने न्यूक्लियस आप कह लीजिए, जैसे एटम में न्यूक्लियस होता है। और जिस तरह की उसकी अर्थव्यवस्था होगी, अर्थव्यवस्था का स्वरूप जैसा होगा, उसी के अनुकूल उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। ऊपर के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, डेवलप का मतलब जैसे राजनीति, आप कला, संस्कृति, साहित्य, समाज, परंपराएं, इसको आप ऊपर का स्ट्रक्चर मान लीजिए। तो एक इनर स्ट्रक्चर हो गया जिसमें इकोनॉमिक्स है, और एक आउटर स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हम कला, साहित्य, संस्कृति, राजनीति, इन सबको लेते हैं। आप कल्पना करके देखिए दोस्तों, कि अभी की बात नहीं है, लगभग 2500 साल पहले मौर्य साम्राज्य के जो प्रधानमंत्री हुए हैं चाणक्य, उन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखी है राजनीति पर, और उसका नाम दिया है अर्थशास्त्र। इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र राजनीति की दृष्टि से भी कितना महत्वपूर्ण है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इतना इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र मायने रखता हो, महंगाई पर आप एक दिन में कैसे नियंत्रण पालेंगे? क्योंकि पहले तो आप नीतियां बनाते हैं, फिर नीतियों का प्रभाव होता है, और जब वो प्रभाव बहुत गहरे हो जाते हैं तो उनको उखाड़कर फेंकना भी उतना आसान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसका मूल्यांकन कीजिए, और जो सरकार जवाब दे रही है आप उसका मूल्यांकन कीजिए, फिर आप सही स्थिति तक पहुंचेंगे। डेफिनेटली सरकार को अभी रेट बढ़ाने पड़े, रेल फेयर बढ़ाना पड़ा, आप देख रहे हैं खाद्य स्फीति बढ़ती चली जा रही है। तो ये सारे संकट एक दिन में कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और इसको प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया, ये कड़वी दवाई है, मतलब अभी तो कड़वी लग रही है लेकिन इसके फार फ्लंग इम्पैक्ट होंगे। ये कितना सही है इनका कहना, ये डिपेंड करेगा दोस्तों अभी जो 10 तारीख को जो बजट आने वाला है। बजट आप कह लीजिए कि हमारे अर्थव्यवस्था का पूरा एक की होती है, चाबी होती है। बजट से आप अर्थव्यवस्था की गाड़ी को चालू करते हैं। अब देखिए बजट ये बताएगा कि हमारे आगे आने वाले दिन कैसे होंगे और हम उस पर महंगाई हम उस बजट की नीतियों के आधार पर महंगाई पर कितना नियंत्रण कर पाएंगे, देश का जो विकास है वो किस तरह का होगा, चाहे वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे वो गरीबी से जुड़ा हुआ मामला हो, बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। इसीलिए जो वित्त मंत्री का काम होता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है, याद रखिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो काम होता है वो वित्त मंत्री का होता है। तो ये मुझे महंगाई के बारे में आपको थोड़ा सा न्यूज से हट करके जो एक व्यूज होता है, जो चीजों को समझने की जो बात होती है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है कि अब मैं देखिए धीरे 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 ना चीजों को अब एक्सपेंड कर रहा हूं, आपको सब्जेक्ट से बाहर ले जा रहा हूं ताकि सब्जेक्ट को आप ज्यादा अच्छे से समझ सकें, सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बन सके, है ना, मैं उस रूप में मैं ले जा रहा हूं। दूसरी खबर थी, आपने देखा कि विपक्ष के नेता को लेकर के खबर थी, हम लोग कल भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, मैंने काफी डिटेल में बताया था। लगातार सरकार मतलब विपक्ष पार्टियों की मांग बनी हुई है, स्पीकर ने कहा है कि वह आकर के मुझसे बात करें, देखते हैं कि इस बारे में क्या स्थिति होती है, हम इसकी चर्चा पर विशेष नहीं जाएंगे। इसी तरह से मित्रों एक शब्द आया था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, अब देखा कि जो अडानी जो गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर इस आयोग ने 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, राइट। ये इस प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, देखिए एक वक्त है, ये समय है जब आपको इसे पढ़ लेना चाहिए। देखिए जब आपको मेंस में आप देखते हैं ना कि इस तरह के पूछ लिए जाते हैं प्रश्न, अब आप सोचेंगे कि यार इसको तो कभी पढ़ा नहीं, इसको तो कभी सुना नहीं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछ लिया गया। अगर हमें नहीं मालूम है इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए हमसे चूक हो गई, कभी न कभी वो चर्चा में वो बात आई थी, हम असावधानी बस उसको चूक गए, या हमने सुना भी तो हमने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, या हमने यही समझ लिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इसमें अडानी का नाम जुड़ा हुआ है, अडानी हिंदुस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक तरह से अब वो अंबानी के पीछे पीछे चल रहे हैं और इनकी चर्चा भी बहुत ज्यादा हुई थी, अडानी ग्रुप की चर्चा हुई थी। तो ऐसी स्थिति में चूंकि उनके ऊपर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, मैं समझता हूं कि जुर्माने की राशि भी काफी बड़ी है और प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया है, तो हमको अडानी जी से मतलब नहीं है, क्यों लगा इससे भी मतलब नहीं है, हमको मतलब कि ये जो आयोग है ये क्यों बनाया गया है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और इसका क्या रोल है, अभी तक इसने क्या किया, इस तरह से थोड़ा सा आप अगर गूगल पर भी चले जाएंगे या किसी किताब में भी देखेंगे तो केवल दो पेज से ही आपका सब पर्याप्त होगा, इसको आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, प्रतिस्पर्धा आयोग पर आप थीसिस लिखने नहीं जा रहे, केवल थोड़ी सी चीजें मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इसके क्या क्या दायित्व है, उद्देश्य क्या क्या है, क्या क्या दायित्व है और अभी तक इसका क्या रोल रहा है, बस केवल इतना ही, यही है जनरल स्टडीज, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, जनरल स्टडीज का हिस्सा है, इस बात को आप बाकायदे ध्यान में रखें। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के अखबारों पर, एक अच्छी खबर है हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए कि कल मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल डाला था जो ब्रिटेन से जो विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जो भारत के दौरे पर कल आ गए हैं उनका आर्टिकल था, वो इंग्लिश में था, दैनिक जागरण ने आज उसका हिंदी वर्जन ज्यों का त्यों छापा है, हो सकता है कि नेशनल एडिशन में वो कल ही आ गया हो, मुझे नहीं मालूम, तो ये मैं फिर से नॉलेज सेंटर में डाल रहा हूं। भारत और ब्रिटेन के संबंधों को लेकर के हम लोगों ने इससे पहले चर्चा की है कि मैंने इसमें आपको तरीका भी बताया था कि भारत के विदेश नीति और विदेश व्यापार को समझने के लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कल मैंने डिटेल में बताया था, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो देखिए कि अब इसके आउटकम क्या होते हैं, मतलब दोनों मंत्री आए हुए हैं, भारत के साथ बातचीत चल रही है, जैसे ये बातचीत खत्म हो जाएगी निश्चित रूप से न्यूज भी आएंगे और उस पर आर्टिकल भी आएंगे, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग इसे बकायदे पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल है, खासकर सुधार की बयार से ही छटेंगे मुश्किलों के बादल। देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, इनफैक्ट सही बात है कि काफी खराब हो चुकी है। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक सी गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बहुत बुरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ पहले से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन फिर भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जिसको हम बहुत अच्छा कहें। किसान उधर आत्महत्या कर रहे हैं, मानसून की स्थिति खराब है, इराक में युद्ध छिड़ा हुआ है, दुनिया राजकोषीय घाटे से गुजर रहे हैं, जीडीपी कम हो गया है। आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ भी हमारी एनुअल है वो 4 से 5% हो गई, तो ढेर आर्थिक संकट से तो हम गुजर रहे हैं। इस आर्टिकल में इन्होंने जो सबसे बड़ी जो बात कही है वो है सब्सिडी को लेकर के। इनका ये मानना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत है उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत ज्यादा सब्सिडी का दिया जाना, और इसमें इन्होंने एक दो अच्छे उदाहरण देकर के उसके रियलिटी को बताया। देखिए सब्सिडी किनके लिए दी जाती है, सब्सिडी गरीब तबके के लिए दी जाती है ताकि वो उन चीजों का इस्तेमाल कर सके। जैसे एक गैस सिलेंडर है वो मार्केट में ओपनली 1000 या 1100 रुपए का है एक सिलेंडर, लेकिन सब्सिडी देने के बाद ये अभी हमारे घरों में 450 रुपए में आ जाता है, तो बाकी पैसा सरकार वहन करती है, ये मैं कल बता चुका हूं। तो ये गरीबों को दी जाने वाली मदद है। इसमें इन्होंने बताया कि जो रसोई गैस है इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है, जबकि इसका इस्तेमाल देश के केवल 28% फैमिली कर रही है। ठीक इसी तरह से बताया कि उर्वरक पर 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ उपाय बताए हैं, का कहना है कि जब तक ये सब्सिडी वाले मामले को ठीक नहीं करेंगे तब तक मुद्रा स्फीति की दर को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ये इनकी अपनी ओपिनियन है तो अंडरलाइन किया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल कमेंट है, वो है आधार को आधार। आपको मालूम है आधार कार्ड जिसके नंदन नीलकेणी जी जिस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे और वो लगातार आधार कार्ड बन रहे थे और लगभग 60 करोड़ लोगों को आधार कार्ड दिए भी जा चुके हैं, आधी आबादी को 50% को कह लीजिए। इसके बाद एक विवाद की स्थिति आई क्योंकि इधर आधार कार्ड बन रहे थे, उसी तरह से दूसरा जो गृह मंत्रालय का एक जो विभाग है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर योजना उसमें भी लोगों के इसी तरह से कुछ बनाए जा रहे थे, उसको लेकर के विवाद हुआ, मामला फिर कोर्ट में गया, फिर ये हुआ कि अब आधार को खत्म कर देना चाहिए। ऐसी बात होती रही, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि नई आधार कार्ड को हम जारी रखेंगे, तो एक बहुत अच्छी खबर उन्होंने इस तरह से दी। इसको कुछ लोगों ने वेलकम किया है क्योंकि जो आधार कार्ड है इसमें बहुत अच्छा दिया कि आधार कार्ड के बनने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स की जो सब्सिडी दी जा रही है ना, इस सब्सिडी का फायदा सही में उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए। लेकिन जब अगर आधार कार्ड मिल गया बन गया और आधार कार्ड के आधार पर जब उनका बैंक में अकाउंट खोल दिया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे लिए गैस सिलेंडर आ रहा है तो मुझे मार्केट में गैस सिलेंडर के लिए 1100 रुपए ही देना पड़ेगा और बदले में 600 रुपए मेरे अकाउंट में सरकार वापस कर देगी। मतलब जो सब्सिडी की जो रकम है वो सीधे कंपनी को न दे करके जो कंज्यूमर है उसको दी जाएगी। तो इसकी वजह से अगर ये सिस्टम शुरू कर दिया गया तो ये मानना है कि बहुत सा जो मिसमैनेजमेंट है, कुप्रबंध है, वो खत्म हो जाएगा। सब्सिडी का बहुत पैसा लीकेज में चला जाता है, गलत लोगों के हाथ में चला जाता है, वो खत्म हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी, लागत लेन देन के मामले, इस तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं उससे सुधर जाएगी। और नो डाउट कि एक बहुत जबरदस्त पहचान पत्र तो आधार कार्ड होगा ही। इसको लेकर के इन्होंने एडिटोरियल कमेंट लिखा है, आप इसको जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इकोनॉमिक टाइम्स में ही एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल है, खासकर ग्रोथ को लेकर के हमारी अर्थव्यवस्था को, और इस पर हम लोग लगातार चूंकि बहुत बात करते रहे हैं, लगातार हमारी बात होती रही कि ग्रोथ अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सब्सिडी की बात होती है, टैक्स रिफॉर्म की बात होती है, लेबर लॉ को ठीक करने की बात होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उसकी बात होती है, तो उन्हीं सबको एक तरह से इसमें रिपीट किया गया है। थोड़ा सा इसका जो एंगल है वो बहुत इकोनॉमिस्ट का एंगल है, मतलब एक विशेषज्ञता का एंगल है, आंकड़े वगैरह काफी कुछ हैं, तो आपको वो जो विशेषज्ञता वाला जो एंगल है जो बहुत ज्यादा आंकड़ेबाजी है उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके काम के नहीं है। हाँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन में रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा हो या ऑप्शनल के रूप में आपने इकोनॉमिक्स लिया है, तब फिर आप इसी को अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो ये भी नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेगा। इकोनॉमिक टाइम्स का जो एडिटोरियल कमेंट है फ्रेंड्स, ये आखिरी क्लिपिंग है, वो है पावर्टी के ऊपर, गरीबी के ऊपर। जैसे कल आपने देखा कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट अखबारों में आ गई है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, और उनके हिसाब से 29.6% हमारी जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, और उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि कितने रुपए कमाने वाले लोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे। इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, ओपिनियन दी है, वो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। उन्होंने कहा कि भारत में शुरू से लेकर अभी तक गरीबी हटाओ अभियान चल रहा है। मिसेस गांधी 1971 के बाद लगातार गरीबी हटाओ आंदोलन लेकर के और राजनीतिक उसमें आई भी, अनेक तरह की योजनाएं बनी, इमरजेंसी के समय में 20 सूत्री कार्यक्रम बने, और इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि लगातार कार्यक्रम बन रहे हैं, चाहे उद्योग लगाने के कार्यक्रम हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यू हो, मनरेगा जैसे रोजगार मजदूरी परक योजनाएं हो, ढेर सारी योजनाएं गांव गरीबों के लिए बनी। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि गरीबी कम नहीं हुई। इसमें इन्होंने यही कहा है कि गरीबों के लिए योजनाएं तो बहुत बनी लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। इसके पीछे क्या कारण है, ये क्या हम कर रहे हैं, हमको गरीबी कम करना है या गरीबों को कम करना है, क्या करें हम? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो योजनाएं हैं वो उनको केवल सहायता प्रदान कर रही हैं, उनको कमाने के लायक नहीं बना रही हैं, नंबर एक। और दूसरा ये कि उनको कमाने की स्थितियां प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। जैसे मनरेगा की स्थिति को ले लिए, मनरेगा में इतना पैसा खर्च होता है, राइट, नो डाउट कि इससे गांव के लोगों को रोजगार मिला है, प्रत्येक घर में पैसा पहुंच गया है, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिली है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट के जरिए, मजदूरी के जरिए जो संपत्ति, परिसंपत्तियां गांव के क्षेत्रों में खड़ी होनी चाहिए थी, कि सड़क बन जाते, तालाब बन जाते, कुएं बन जाते, अस्पताल बन जाते, बिल्डिंग्स बन जाती, तो ये परिसंपत्तियां खड़ी नहीं हुई, जो मनरेगा की सबसे बड़ी आलोचना है। आपको नोट कर लेना चाहिए, सबसे बड़ी आलोचना ही होती, क्योंकि अगर ये चीज बन जाती तो इन लोगों को फिर एक सहारा मिल जाता और ये फिर मछली पकड़ने लायक बन जाते। सरकार क्या कर रही है अभी, जो इन्होंने लिखा है कि वो मछली उनकी थाली में परोस रही है, जब तक मछली रहती खाते हैं, इसके बाद फिर भूखे रहने लगते हैं। फ्रेंड्स, यहां मैं एक अर्थशास्त्री का नाम बताऊंगा, और प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, आप जरूर इसको, ज्यादातर स्टूडेंट मिस कर गए होंगे। ये अमरीकी अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है गैरी बेकर, जिनकी अभी मई में 2 महीने पहले डेथ हुई है। गैरी बेकर पहले व्यक्ति हैं अर्थशास्त्री जिन्होंने परिसंपत्ति के रूप में, मतलब वेल्थ के रूप में, तीन चीजों को आइडेंटिफाई किया। तीन चीजों को उन्होंने परिसंपत्ति माना, और उसमें याद रखिए, एक है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा है प्रशिक्षण। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह आपको नोट कर लेना चाहिए, गैरी बेकर के नाम से। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, कि ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन सबसे बड़ी परिसंपत्तियां हैं, और जब तक इन पर काम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती, विकासशील देश, विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते, राइट। इसमें देखिए, शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या फर्क है, बाकी तो आप समझ जाएंगे। देखिए, शिक्षा हो सकता है कि मैंने बीकॉम कर लिया है, मैं बीए कर चुका हूं, या मैं एमए कर चुका हूं, एमएससी कर चुका हूं, ये तो मेरा नॉलेज हो गया, लेकिन मुझे करना कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं। तो प्रशिक्षण का मतलब है ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जिसको आप वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, कि मैं कुछ करने लायक बन सकूं। आपने देखा है कि नारायण मूर्ति जी ने, जो इन्फोसिस के मालिक रहे हैं किसी समय, अब तो अब उससे वो हो गए, कहा था कि हमारे यहां इंजीनियर बहुत हैं लेकिन स्किल्ड इंजीनियर नहीं है। मतलब आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ करके जो स्टूडेंट आए हैं, आप उनको सीधे सीधे इंजीनियरिंग के काम में नहीं लगा सकते, उनको पहले तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और ट्रेनिंग देने के बाद कहीं वो इस लायक बनते हैं कि वो इंजीनियरिंग का काम कर सके। और याद रखिए कि उन्होंने ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो कोई अपने पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका दुर्भाग्यजनक तरीके से ये कहना था कि उनको कुछ नहीं आता है, केवल किताबी ज्ञान है। इसको लेकर तो उस समय फिर बड़ी आलोचना भी, यहां तक कि नारायण मूर्ति जी ने तो आईआईटी संस्थानों की भी आलोचना कर दी थी कि वहां से भी निकले हुए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा काम के नहीं होते। उसको लेकर के फिर चेतन भगत और उनके बीच में काफी वो भी चला, चेतन भगत जी ने उसकी बड़ी आलोचना की थी। तो खैर, ये तो मुद्दे आते रहते हैं, और ये माना भी जाता है कि भारत के पास स्किल्ड की बहुत कमी है, चाहे वो लेबर के स्तर पर ले लें हम, या बहुत हायर लेवल पर हम ले लें। तो ट्रेनिंग उनको इस लायक बनाती है कि वो अर्न कर सके, और जब अर्न कर सकेंगे बट नेचुरली कि तभी वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगे। तो इसको लेकर के इन्होंने एक अच्छी ओपिनियन दी है और मैं समझता हूं कि एक नए तरीके से की सोच है इस एडिटोरियल कमेंट में, तो ये भी नॉलेज सेंटर में फ्रेंड्स अवेलेबल रहेगा, आप लोग इसे भी देखें। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। आज के ईमेल में सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा एकेडमी की तरफ से, जिन्होंने इस ऑडियो गाइडेंस के बारे में तारीफ की है और ये लिखा है कि उससे उनको फायदा हो रहा है। उसमें शिबू साहू हैं, जयप्रकाश हैं भोपाल से, स्वर्णिका कुमारी हैं पटना से, आसिफ खान हैं बलरामपुर से और अभिषेक सिसोदिया हैं। आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप ऑडियो गाइडेंस का फायदा आपको मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि इस फायदे को आप लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। ये फोन ये ईमेल है लक्ष्य सिंह का न्यू दिल्ली से। आपने फोटोकॉपी के बारे में लक्ष्य सिंह जी ने लिखा है कि जब ये मुखर्जी नगर गए और मेरी किताब इन्होंने मांगी तो लोगों ने फोटोकॉपी अवेलेबल करा दी और उन्होंने कहा कि किताब अवेलेबल नहीं है। लक्ष्य सिंह जी बहुत दुर्भाग्यजनक है ये इस देश का हिन्दुस्तान का, इसीलिए फोर्थ पेपर रखा गया है नीतिशास्त्र का, सत्यनिष्ठा नीतिशास्त्र का। फोटोकॉपी बेचना एक तरह की चोरी है। एक तरह की चोरी क्या, सीधे सीधे चोरी है। ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। कोई भी प्रकाशक कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं कर सकता। उस पर प्रकाशक का अधिकार होता है, उस पर राइटर का अधिकार होता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपनी थोड़ी सी कमाई की वजह से, मतलब उसमें क्या होगा, वो 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा कमा लेंगे और इस तरह का घटिया और अवैधानिक काम वो करते हैं। ये किताबें सब जगह अवेलेबल हैं लेकिन वो मंगाना चाहे तब, क्योंकि अगर वो किताब को सीधे आपको बेचेंगे तो उनको हो सकता है कि एक किताब में 20 रुपए मिले और फोटोकॉपी बेचेंगे तो उनको 25 रुपए मिल जाएंगे, तो उनके लिए 5 रुपए बहुत बड़ी चीज है, भले ही इसके लिए कितना भी इलीगल स्टेप क्यों ना उठाना पड़े। ये सत्यनिष्ठा नैतिकता नीतिशास्त्र ये केवल सिविल सर्वेंट के लिए नहीं है, दुकानदारों के लिए भी है और सच पूछे तो सिटीजन्स के लिए भी है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उनके लिए भी है जो ऐसी किताबें खरीदते हैं, फोटोकॉपी खरीदते हैं। मैंने कभी अपने बेटे को अलाउ नहीं किया कि वो फोटोकॉपी खरीदे क्योंकि उस पर दूसरों का अधिकार है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये होता है कि या तो हमको रूल्स रेगुलेशन की जानकारी नहीं होती और इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते, दुकानदार से कभी पूछते नहीं है कि भैया तुम ये किस आधार पर बेच रहे हो, क्या तुम्हारे पास इसका कुछ लाइसेंस है, तुम्हारे पास कोई लिखित वो है, कैसे बेच रहे हो। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं, देखो अभी वो तुमको समझेगी। ये एक तरह से स्मगलिंग है, कह लीजिए ब्लैक मार्केटिंग का ही एक दूसरा रूप है। लेकिन लक्ष्य सिंह जी एक ऐसा काम है जिसको नियंत्रण कर पाना सच पूछे तो बहुत कठिन काम है। देखिए हम मैं एज ए राइटर मैं अपना काम कर रहा हूं, प्रकाशक उन चीजों तक पहुंच नहीं सकता है, कितने केस दायर करेगा, कितनी लड़ाइयां लड़ेगा। तो आप जैसे लोग अगर चाहें तो इसे एक इश्यू बना करके और कदम उठा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहूंगा, चलिए वो तो एक बात हुई जो इसके बारे में मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग में कभी ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि आपको फोटोकॉपी मिल रही है, ये कह रहा है वो तो निम्न में से, लेकिन आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है उस किताब की और वो कह रहा है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आपको केवल फोटोकॉपी करना मिलेगी, तो आप निम्न में से कौन सा कदम उठाएंगे। यही तो है डिसीजन मेकिंग और यही है सत्यनिष्ठा। खैर तो आपको अगर दिक्कत हो रही हो, किताब अवेलेबल है मुखर्जी नगर में, हो सकता है कि वो खुद ही क्योंकि फोटोकॉपी में उसको 5 रुपए ज्यादा कमाई हो रही होगी तो चाहेगा कि भैया पहले मैं इसी को दूं, लेकिन पढ़ने का मजा तो दोस्तों ओरिजिनल किताब में है। किताबें तो सबसे बड़ी संपत्ति होती है, उसमें आप अंडरलाइन करते हैं, फ्रेश कॉपी होती है, जैसे फ्रेश खाना खाने का, फ्रेश फ्रूट खाने का मजा होता है, उसी तरह से उस किताब को पढ़ने का मजा होता है। किताब में एक सुंदरता भी तो होती है, सौंदर्य का भी अपना स्थान होता है। खैर लेकिन अपनी अपनी ये तो भावना है। अगर आपको ये किताब नहीं मिलती है तो ये किताब amazon.com पर भी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पर भी मेरी सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप वहां से मंगा सकते हैं। लेकिन आपने सूचना दी एक जिम्मेदार सिटीजन्स की तरह, जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह, और सच पूछिए तो afis.com से जुड़े होने के कारण आपने ये खबर दी। इसके लिए मैं सच में एकेडमी की तरफ से और एज ए राइटर अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की सत्यनिष्ठा की भावना को बनाए रखें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन्फॉर्म तो करें, राइट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये विनेश है सीतापुर से, इन्होंने मीडियम का के बारे में पूछा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विनेश, चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जांचने वाले इंग्लिश वाले होते हैं और हिंदी मीडियम को जांचने वाले हिंदी वाले होते हैं। लेकिन आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि फिर हिंदी वाले कम सेलेक्ट क्यों होते हैं, उसके दूसरे रीजन है, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है वो बिल्कुल कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद है दोस्तों अतुल मोरे का, इन्होंने पूछा कि क्या आपकी इंदौर में क्लास लगती है। मेरी कोई क्लास इंदौर में नहीं लगती है, मुझे मेरी क्लास सिर्फ भोपाल में लगती है। ये आरती हैं दिल्ली से, इन्होंने कहा है कि सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रही हैं। आरती जी, जो आपने जितनी चीजें पूछी हैं वो मेरे लिए बताना बिल्कुल संभव नहीं है ऑडियो गाइडेंस के जरिए। मेरी एक किताब आई है आप आईएएस कैसे बनेंगे, उसमें प्रिपरेशन के बारे में बहुत डिटेल में मैंने सारी बातें लिखी हैं। आप ये किताब ले लीजिए, इसका नाम है आप आईएएस कैसे बनेंगे। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में तो ये किताब अवेलेबल है, और यदि वहां नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट और amazon.com से मंगा सकती हैं। उससे आपकी समस्या मुझे लगता है कि काफी कुछ हल हो जाएगी। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस afeis.com को यहीं समाप्त करने की इजाजत लेता हूं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको मेरा फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।